काफी साल पहले, 30 साल हो रहे होंगे मेरे ख्याल, एक जगह मैं पढ़ाता था मदरसे में। मेरी जिंदगी का बड़ा अच्छा टाइम था, मैं मदरसे में पढ़ाता था, बहुत अच्छे बच्चे थे मेरे पास और उनसे भी मैं खुद भी बहुत सीखता था। उसमें एक लड़का था, उसका ताल्लुक तुर्की से था और बड़ा अच्छा लड़का था। एक दिन मैंने देखा कि दर्स में बड़ा परेशान बैठा हुआ है, जैसे वो शिरकत करता था, पार्टिसिपेट करता था हमारे दर्स में, इस तरह नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मैं बड़े दिल से पढ़ाता था उन बच्चों को, बहुत अच्छे लड़के थे वो। दर्स के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम आज के किसी लड़के आए हो, क्या मुसीबत है, बात बड़ा है तुम टफ बिहेवियर। कहने का मुझे एक बात करनी है आपसे, बहुत परेशान हुआ। मैं सोचा शायद बेचारे घर में कोई मसला हो गया है, अपने घर में होता है ऐसी मसाइल। उस जमाने मोबाइल टेलीफोन्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, खत आता था, इंसान परेशान होता रहता था, अब क्या करें। मैंने उसको कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ। कहने का मैंने ख्वाब देखा। अरे मैंने कहा यार क्या ख्वाब देखे, अब ये ख्वाब सुनाएगा मुझे। मैंने कहा चलो उसका दिल रखने की खातिर मैंने कहा सुनाओ। अच्छा, कहने का मौलाना मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये ज़माना मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, अंदाजन 87 था, उस ज़माने में जंग चल रही थी, ईरान इराक की जंग। ईरान इराक की जंग एक अजीब मौजज़ा थी, हम लोग की ज़बान में इसको मौजज़ा कहते हैं। इसने लोगों को तब्दील कर दिया था, पूरा मुल्क लग रहा था जैसे मुत्तकी हो गया, पूरे मुल्क के ऊपर एक ऐसी अजीब फिजा आ गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी उसी ईरान उसी मोहल्ले में जाता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता ये वही है, बहुत अजीब सूरत हाल थी। लोग ऐसे अजीब हो गए थे, सब लग रहा था मुत्तकी हो गए, सब परहेजगार हो गए। तो वो जंग का जमाना था और उस जंग के नतीजे में लोगों में करबला की ऐसी तड़प थी, मैं बता नहीं सकता, मर रहे थे लोग इस बात के ऊपर किसी तरह हम जीत जाएं जंग और करबला जाना। ये जो आप देख रहे हैं लाखों ईरानी पहुंचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी कम नहीं है, लाखों पहुंच रहे हैं लेकिन ईरानी सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। इनके अंदर करबला की एक अजीब तड़प उस जंग ने ईजाद की थी। उस जमाने बहुत सारे नारे ऐसे थे जिसको करबला चाहिए, वो जंग चले और ये करे, करबला आवाज दे रही है। तो उसने कहा कि मुझे कहा कि उस जमाने हम लोग को मुअल्लिम कहते थे। तो कहने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है और मैं उस ख्वाब से बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसको कहा तुमने क्या ख्वाब में देख लिया। कहने लगा आपको तो पता है मसा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सैयदुश्शुहदा को मानते हैं, मातम करते हैं, ज्यारतें पढ़ते हैं, हर रोज़ इस तरह ये करता हूँ वो करता हूँ। कहने का मैंने ख्वाब देखा कि जैसे मैं एक बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, माजरत के साथ थोड़ा सा मैं तफसील में जा रहा हूँ, एक पॉइंट को पहुँचाने की रहसा ना वो भूल ना जाऊँ। कहने का मैंने देखा मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, एक बस आई उसकी जगह पर जहाँ पे बसों के ऊपर लिखा होता ना ये नंबर क्या है इसका, कौन कौन से स्टॉप पर जाएगी, तो कहने का उसके ऊपर लिखा था करबला। वो बस खड़ी हुई मेरे सामने, उसका दरवाजा खोला, कहने का उसका दरवाजा जो खोला मैं देखा सारे लोग उसके अंदर शहीद हुए हुए पड़े, सब शहदाएं कफन में, खून बह रहा है किसी का किसी का। ये दरवाजा खोला कि मैं बैठूं, कहने का मैंने अंदर झांक के देखा, मैं कहा भाई मैं नहीं बैठ सकता, यहाँ हालत बहुत खराब है, इतना खून है, इतने लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। कहने का मैं जाता था यूं आता था, फिर जाने की कोशिश करता कि भाई करबला जा रही है बैठो इसमें, क्या फिर वापस। कहने का मैंने इतना पसो पेश किया कि दरवाजा बंद हो गया, गाड़ी चली। अब कह रहा है मैं जब से सुबह से उठा हूं ना मेरी तो हालत खराब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं अहले करबला नहीं हूं तो फिर जिंदा किस बात की, क्या करूंगा मैं, इसमें फायदा क्या हुआ फिर इस बात। अच्छा अब मैं आपसे एक बात सवाल पूछता हूं, बेज़ाहिर ये ख्वाब बुरा नहीं है, यानी ख्वाब कहो कि जाली ख्वाब है, कुछ ख्वाब होते हैं ना बेतुके ख्वाब होते हैं, रात को इसने कुछ गलत चीज खा ली है, सुबह तक उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहता है कोई गलत चीज देख ली टीवी के ऊपर वही ख्वाब में नजर आता रहता है, ये ऐसा तो नहीं लग रहा है, ये ख्वाब सही ख्वाब लग रहा है। तो क्यों मसलन ये आदमी, लड़का मैं जानता हूँ मेरा स्टूडेंट था, अच्छा लड़का है और वाकई मसलन करबला के चाहने वालों में, सैयदुश्शुहदा के चाहने वालों में, तो ये बैठ क्यों नहीं रहा था। अच्छा आप खुद तसव्वुर करें, अगर ख्वाब में भी इससे कोई पूछता कि तुम बैठना चाहते हो या नहीं बैठना चाहते हो तो क्या कहता, बैठूंगा, बैठा क्यों नहीं फिर। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि जो सच्चे ख्वाब होते हैं इसमें इंसान जो कुछ करता है ये अपनी मर्जी से करता है क्या, ख्वाब में इंसान अगर कुछ करता है अपनी मर्जी से करता है नहीं, तो कौन सी चीज करवाती है, یہ جو انسان کی ضمیر میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا، یہ خواب میں عمل کر رہا ہوتا ہے. اگر سچا خواب ہو، جھوٹے خواب ہیں تو گیا داستان، اسے کو بیکار. سچے خواب ہو تو جو خواب میں نظر آتا ہے نا، یہ ہمارا اندر کا انسان ہوتا ہے، ضمیر وہ ایکشن میں آ رہا ہوتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ بس میں بیٹھے، نہیں بیٹھ پا رہا. کیوں نہیں بیٹھ پا رہا؟ اس کے ضمیر کے اندر کوئی مشکل ہے، اور خدا نے اس کو بھلائی دی کہ اس کو مرنے سے پہلے بتا دیا کہ تیرے ضمیر میں مسئلہ ہے. تو میں نے اس کو یہی بتایا، میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، تمہیں خدا نے اتنی جوانی میں، اتنی کم عمر میں بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، کربلا پہنچانا ہے، اس مشکل کو حل کرو. تم خوش نصیب ہو. یہ جو پوائنٹ کیا ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ، میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن ابھی ہمارے ضمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر اوپر نکلنے کا موقع مل گیا تو معاملہ اچھا نہیں ہوگا. پھر یہ کب اوپر نکلتا ہے؟ آپ کہیں گے خواب میں چلو نہیں بھی بیٹھا، کیا اس پہ کوئی عذاب ہوگا؟ خواب میں تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ جو نہیں بیٹھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام تشریف لائے اور یہی منظر آیا تو یہ نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا. ہم لوگ روٹین کے اندر کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن جب روٹین ہٹ جائے اور بات ہڈی پہ آ جائے تب کریں گے، تب مشکل پڑتی ہے. ایک آدمی روٹین میں صبح کو اٹھ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر کبھی بہت دیر سے سوئے تو کہتے آج میں نہیں اٹھ پایا. کیوں؟ کیونکہ میں رات کو دیر سے سویا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی صبح کی نماز قلب میں نہیں اتری ہے، ابھی اوپر اوپر الارم کلاک کے اوپر چل رہی ہے، ابھی اندر تک نہیں آئی ہے. اندر تک آتی تو فرشتے بھی اٹھا دیتے اسے کہ بھئی تیری نماز کیوں قضا ہو. یہ جو اندر کا معاملہ ہے نا، یہ بہت سنگین معاملہ ہے. میں آپ سب اس میں مشترک ہوں. چلو اے فرشتوں، مجھے کربلا لے چلو.